सभा उपदेशक अध्याय दो, अध्याय दो पद एक। मैंने अपने मन से कहा, चल मैं तुझको आनंद के द्वारा जांचूंगा, इसलिए आनंदित और मगन हो, परंतु देखो ये भी व्यर्थ है। हम नए नियम में यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 16 पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं, ये संसार ही की ओर से है, जिनके द्वारा मनुष्य उत्तर ढूंढना चाहता है। एक संतुष्टि, यही चीजें सुलेमान ने ढूंढी। यदि आप उसकी खोज करें तो शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड आपसे दूर रहेगा। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि ये सभी बातें खोखली और बेकार है। सबसे पहले शरीर की अभिलाषा, अपने आप को मौज मस्ती में लगाना, लेकिन देखो ये खाली है, शून्य है, इसमें कुछ नहीं है। सभा उपदेशक अध्याय दो पद दो और तीन। मैंने हंसी के विषय में कहा, ये तो बावलापन है, और आनंद के विषय में उससे क्या प्राप्त होता है। मैंने मन में सोचा कि किस प्रकार से मेरी बुद्धि बनी रहे और मैं अपने प्राण को दाख मधु पीने से क्यों कर बहलाऊं और क्यों कर मूर्खता को थामे रहूं, जब तक मालूम ना करूं कि वो अच्छा काम कौन सा है जिसे मनुष्य अपने जीवन भर करता रहे। इस प्रकार वो अपनी आंखों की अभिलाषा में पड़ गया। सभा उपदेशक अध्याय दो पद चार। मैंने बड़े बड़े काम किए, सुंदर घर। सभा उपदेशक अध्याय दो पद चार से लेकर छह तक। मैंने अपने लिए घर बनवा लिए और मैंने अपने लिए दाख की बारियां लगवाई। मैंने अपने लिए बारियां और बाग लगवा लिए और उनमें भांति भांति के फलदायी वृक्ष लगाए। मैंने अपने कुंड खुदवा लिए कि उनसे वो वन सींचा जाए जिसमें पौधे लगाए जाते थे। ये सब सुंदर भाग, भवन और सब कुछ, और फिर जीविका का घमंड। सभा उपदेशक अध्याय दो पद सात। मैंने दास और दासियां मोल ली और मेरे घर में दास भी उत्पन्न हुए, और जितने मुझसे पहले यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक गाय बैल और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। पशुओं की बहुतायत, क्या आप जानते हैं कि सुलेमान प्रतिदिन अपने कुटुंब, अपने परिवार और अपने नौकरों को खिलाने के लिए 10 बड़े पशु और 20 छोटे पशु काटे जाते थे। प्रतिदिन 100 भेड़े भी लगती थी, अर्थात 36,000 एक वर्ष में। वो 10,000 से अधिक पशु अपने नौकरों और अपने परिवार को खिलाने के लिए कटवाता था। बहुत से पक्षी, हिरण, चिकारे और बहुत कुछ मारे जाते थे ताकि उसके परिवार और नौकरों के परिवारों के पेट भरे जाए। फिर उसके पास 1,000 पत्नियां हैं, उन्हें भी तो खिलाना है, उनके बच्चों को खिलाना, फिर उन सबके पास नौकर, 30 पशु एक दिन में। इसलिए जब वो कहता है, ठीक कहता है, मुझसे पहले जितने यरूशलेम में थे उनसे कहीं अधिक पशु और भेड़ बकरियों का मैं स्वामी था। सभा उपदेशक अध्याय दो पद आठ। मैंने चांदी और सोना का भी संग्रह किया। हम इतिहास नाम पुस्तक में पढ़ते हैं, उसने चांदी को यरूशलेम में पत्थरों के समान साधारण मूल्य का बना दिया था। यदि आपने यरूशलेम की यात्रा की हो तो आप जानते होंगे कि वो कितना पथरीला स्थान है, और उसने यरूशलेम में पत्थरों की तरह चांदी को बढ़ाया। दूसरा इतिहास नामक पुस्तक के चौथे अध्याय में इसके संबंध में बताता है। दूसरा इतिहास 9:27 में चांदी के बारे में कहा गया है। सभा उपदेशक 2:8-9, और राजाओं और प्रांतों के बहुमूल्य पदार्थों का भी संग्रह किया। मैंने अपने लिए गवैयों और गाने वालियों की गायन मंडली को रखा और बहुत सी कामनियां भी जिनसे मनुष्य सुख पाते हैं अपनी कर ली। इस प्रकार मैं अधिक महान हो गया। जीवन का घमंड। सभा उपदेशक 2:9, मैं अपने से पहले के सब यरूशलेम वासियों से अधिक महान और धनाढ्य हो गया, तो भी मेरी बुद्धि ठिकाने रही। वो वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान का विद्वान था। सभा उपदेशक 2:10, और जितनी वस्तुओं को देखने को मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। मैंने अपना मन किसी प्रकार का आनंद भोगने से ना रोका, क्योंकि मेरा मन सब परिश्रम के कारण आनंदित हुआ, और मेरे सब परिश्रम से मुझे यही भाग मिला। ध्यान दे, ऐसी बातें कौन कह सकता है? जितनी वस्तुओं को देखने की मैंने लालसा की, उन सबों को देखने से मैं ना रुका। बहुत कम लोग ऐसा बयान दे सकते हैं। यदि आप ऐसा कहे तो आपके पास भी सुलेमान के बराबर संपत्ति होनी चाहिए। ऐसा प्रतीत होता है, यदि मैं होता, और हम अपनी आंखों की अभिलाषा पूरी नहीं कर पाते। हम आगे जाकर छोटी किश्ती देखते हैं और सोचते हैं, काश यदि ये किश्ती मेरे पास होती। सुलेमान होता तो कहता, खरीद लो। मेरा मतलब, उसने किसी चीज को नहीं छोड़ा। जो कुछ उसने इच्छा की, जो कुछ उसे चाहिए था, उसने प्राप्त किया। बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं, ओह मैं बहुत खुश और बहुत संतुष्ट हो जाऊंगा। परंतु क्या सुलेमान संतुष्ट था? सभा उपदेशक 2:11, तब मैंने फिर से अपने हाथों के सब कामों को और अपने सब परिश्रम को देखा, तो क्या देखा कि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है और संसार में कोई लाभ नहीं। इन सब से कुछ लाभ नहीं, ये सब व्यर्थ था। मैं अब भी खाली था, मैं अब भी विफल था। ये मानवीय स्तर का जीवन है, ये आत्मिक स्वभाव का इनकार है। परमेश्वर के बिना जीवन जीने की कोशिश है, उसके बिना संतुष्टि और अर्थ ढूंढने की कोशिश है। आप ऐसा कदापि नहीं कर पाओगे। सभा उपदेशक 2:12, फिर मैंने अपने मन को मोड़ा कि बुद्धि और बावलेपन और मूर्खता के कार्यों को देखूं, क्योंकि जो मनुष्य राजा के पीछे आएगा वो क्या करेगा? मेरे बाद कौन क्या करेगा? मेरा मतलब, मैंने सब कुछ कर दिया है। सभा उपदेशक 2:12 में आगे लिखा है, केवल वही जो होता चला आया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, मैंने सब कुछ कर दिया। सभा उपदेशक 2:13-15, तब मैंने देखा कि उज्याला अंधियारे से जितना उत्तम है, उतना बुद्धि भी मूर्खता से उत्तम है। जो बुद्धिमान है उसके सिर में आंखें रहती हैं, परंतु मूर्ख अंधियारे में चलता है। तो भी मैंने जान लिया कि दोनों की दशा एक सी होती है। तब मैंने मन में कहा, जैसे मूर्ख की दशा होगी वैसे ही मेरी भी होगी, फिर मैं क्यों अधिक बुद्धिमान हुआ? मैं अपनी सारी बुद्धि से अपने जीवन को लंबा नहीं कर सकता। अपनी सारी समझ और ज्ञान से जो मेरे पास है, मैं जीवन को बढ़ा नहीं सकता। मैं मूर्खों के समान मरूंगा जो कुछ नहीं जानते। वह भी मरेंगे, मैं भी मरूंगा, और जब हम मरेंगे तब सब खत्म हो जाएगा। इसलिए बुद्धिमान को इतना ज्ञान होने से क्या लाभ जो मेरे पास है, क्योंकि हम दोनों साथ ही कब्र में जाएंगे, हम दोनों ही मरने वाले हैं। मेरी बुद्धिमानी मुझे मृत्यु से नहीं बचाएगी। बुद्धिमान कैसे मरता है? जैसे मूर्ख। तब मैंने अपने हृदय में कहा, जैसे मूर्खों के साथ होता है वैसे ही मेरे साथ होगा, इसलिए मैं ज्यादा बुद्धिमान क्यों हूं? सभा उपदेशक अध्याय 2:15-17। और मैंने मन में कहा, ये भी व्यर्थ ही है, क्योंकि ना तो बुद्धिमान का और ना मूर्ख का स्मरण सर्वदा बना रहेगा, परंतु भविष्य में सब कुछ भुला दिया जाएगा। बुद्धिमान क्यों कर मूर्ख के समान मरता है? इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की। एक मिनट ध्यान दे, सुलेमान के पास सब कुछ था, उसके पास हर तरह का सुख था, और वो हर चीज जो शायद हम सोच भी नहीं सकते। सुलेमान के पास इस संसार में सब कुछ था, और वो क्या कह रहा है, मैंने जीवन से घृणा की। सभा उपदेशक अध्याय 2:17-19। क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि वो मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख? जो कुछ भी मैंने निर्माण किया, जमा किया, पूरा किया है, फिर भी मैं मरूंगा और मुझे सब छोड़ना पड़ेगा। मैं नहीं जानता लड़के बुद्धिमान होंगे या मूर्ख। इतिहास नामक पुस्तक को देखो, जब सुलेमान ने अपना सिंहासन अपने पुत्र रहुबियाम के लिए छोड़ दिया, तब उसने क्या किया? जैसे ही वो सिंहासन पर बैठा, उसने उत्तरी गोत्रों को क्रोधित किया और वे बगावत पर उतर आए, और उसने साम्राज्य खो दिया और जंगल में चला गया। जितनी महिमा सुलेमान ने जोड़ी थी उसके पुत्र के क्रूर और मूर्ख कार्यों से चली गई। इसलिए सुलेमान की चिंता कारण निराधार नहीं थी, उसका पुत्र मूर्ख था। सभा उपदेशक 2:19-21। तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, उस सब का वही अधिकारी होगा, ये भी व्यर्थी है। तब मैंने अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ, क्योंकि ऐसा अनुभव भी है जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है, तो भी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। आपने बहुत काम किया, कोशिश की, बलिदान किया, कष्ट उठाए, बचत की, बुद्धिमता पूर्ण योजना बनाई और बहुत कुछ किया, और आपकी मौत हो जाती है। यदि आप बड़ा धन जमा कर पाते, करोड़ों रुपए या अधिक, इसका क्या भरोसा कि आप इसको खर्च कर पाएंगे? सभा उपदेशक अध्याय 2:21-22। ये भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है। मनुष्य जो धरती पर मन लगा लगाकर परिश्रम करता है, उससे उसको क्या लाभ होता है? इससे आपको क्या मिलेगा? सभा उपदेशक 2:23-24। उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं और उसका काम खेत के साथ होता है, रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता, ये भी व्यर्थ ही है। सांसारिक ज्ञान से ये निष्कर्ष निकलता है, मैंने सब कुछ किया पर खाली है, इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं है। सभा उपदेशक अध्याय 2:24 से लेकर 26 तक। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय और कुछ भी अच्छा नहीं, मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में मुझसे अधिक सामर्थ कौन है? जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है।